આજના આપણા બીજા મુખ્ય વક્તા મુફ્તી મહમૂદ બારડોલીવાલા સાહેબને હું નમ્ર વિનંતી કરું છું કે તેઓ અહીં આવી પ્રાસંગિક પ્રવચન રજૂ કરે. મુફ્તી મહમૂદ સાહેબ.
الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ایک باپ اور والی اپنی اولاد کو کیا دینا چاہیے اور اولاد کو والیوں کی طرف سے کیا ملنا چاہیے. ہم نے یہ سمجھا ہے کہ ہماری اولاد کے بیٹر فیوچر کے لیے اچھے بھوشیہ کے لیے ایک اچھا مکان ہو, اچھا بینک بیلنس ہو, اچھے انکم کے سورسز ہو. اس کو ہم نے یہ سمجھا کہ یہ ہماری اولاد کا اچھا بھوشیہ ہے. میرے بھائیوں اور دینی بہنوں, جنگل میں رہنے والا ایک جانور اور ماڑے میں رہنے والی چھوٹی سی چڑیا, وہ بھی اپنی اولاد کے لیے اپنی حیثیت اور شکتی کے مطابق ایک چھوٹا سا مکان بناتے ہیں, ان کے لیے دانے کا انتظام کرتے ہیں اور ان کو کھلا پلا کے بڑا کرتے ہیں. تو پھر ہم میں اور جانور کے اندر کیا فرق ہوا ہے؟ اس لیے ایک والی اور ماں باپ کو اپنی اولاد کو کیا دینا چاہیے, وہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو سمجھایا ہے. اللہ کے ایک بہت بڑے نبی ہے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام. یہ جو پوری قوم ہے, یہودی قوم, خاندان بنی اسرائیل, ان کا تعلق حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے انتقال کا جب وقت آیا تو انہوں نے اپنے تمام بیٹوں کو جمع کیا, پورے ایک ڈزن بیٹے تھے, اور ان ایک ڈزن بیٹوں کو جمع کر کے سوال کیا, ما تعبدون من بعدی, اے میرے بیٹو, میرے انتقال کے بعد, میرے دنیا سے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے, کس کی بندگی کرو گے؟ ایک نبی کا سوال ہم کو یہ سکھلا رہا ہے کہ ایک باپ کو اپنی اولاد کے متعلق سب سے بڑا فکر یہ ہونا چاہیے کہ یہ فیوچر کے اندر کون سے عقیدے پر چلیں گے, کیسے مذہب پر چلیں گے, کیسے دین کے اوپر چلیں گے. حالانکہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے, اس میں ایک تو اللہ کے نبی ہے حضرت یوسف علیہ السلام, لیکن اس کے باوجود بھی یعقوب علیہ السلام سوال پوچھتے ہیں, ما تعبدون من بعدی, اے میرے بیٹو, میرے دنیا سے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو وہ بیٹے بھی پورے خاندان نبوت کے بیٹے تھے, اس لیے کہ یعقوب علیہ السلام نبی, ان کے ابا حضرت اسحاق علیہ السلام نبی, ان کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی, ادھر چچا جان حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی, اور بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام نبی. اوپر سے نیچے تک پوری فیملی پیغمبروں کی ہے, اس کے باوجود بھی فکر کر رہے ہیں کہ میری اولاد کا ایمانی دینی بھوشیہ کیسا ہوگا. तो उन औलाद ने जवाब के अंदर कहा कि अब्बा जान नाबुदु इलाहक व इलाह आबाइक, आप इत्मीनान से दुनिया से तशरीफ ले जाइए, हम आपके दुनिया से जाने के बाद आपके बाप दादा हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल, हजरत इसहाक जिस एक अल्लाह की इबादत करते थे उसी एक अल्लाह की इबादत के साथ हम जिंदगी गुजारेंगे। वनहनु लहु मुस्लिमून, और हम एक अल्लाह के फरमा बरदार बनकर के जिंदगी गुजारेंगे। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है, पैगाम है, सबक है कि एक मुसलमान बाप को अपनी औलाद के मुतालिक सबसे बड़ी फिक्र ये होनी चाहिए कि उनका दीनी भविष्य कैसा होगा, उनके अकीदे कैसे रहेंगे, उनकी दीनी जिंदगी कैसी होगी। ये आज हर वाली की जिम्मेदारी है। मेरे दीनी भाइयों, आज हमारे बच्चे स्कूल में मदरसे के अंदर जाते हैं, कितने वाली ऐसे हैं हमारे कि जो उनकी तालीम की तरफ पूरी फिक्र करते हैं। मैं आपसे सवाल करता हूं कि क्या हम रोजाना रात को अपने बच्चों का होमवर्क चेक करते हैं कि हमारा बेटा घर में बैठकर होमवर्क करता है कि नहीं करता है, वो टाइम टू टाइम स्कूल में जाता है कि नहीं जाता है, मदरसे में जाकर के उसने क्या काम किया। कभी हम उनके क्लास टीचर और उस्ताद से मिल करके बच्चों की रिपोर्ट लेते हैं कि हमारे बच्चे की रिपोर्ट क्या है। ये फिक्र होनी चाहिए एक वाली को कि वो अपनी औलाद के बारे में उनके उस्ताद को, शिक्षक को मिल करके उनकी फिक्र करें कि मेरे बच्चे की तालीम कैसी चल रही है। आज हमारा मुस्लिम समाज दीनी और स्कूल की दोनों तालीम के अंदर बहुत पीछे होता जा रहा है, इसमें हमारा बहुत बड़ा कसूर है। आज मैं आपको दुख के साथ कहता हूँ कि मैंने बहुत गौर किया, मैं नौजवानों के साथ बहुत रहता हूँ, स्कूल के हाई स्कूल की छुट्टियों में हम वैकेशन प्रोग्राम करते हैं, मैं पूछता हूँ उनसे कि क्या तुम्हारी तकलीफ है। मैं जिस नतीजे के ऊपर पहुँचा हूँ, आज वालियों की तरफ से औलाद को आउट ऑफ कंट्रोल जो पैसे मिलते हैं, फजूल खर्ची औलाद के अंदर, छोटी छोटी उम्र के बच्चे जेब में मोबाइल लेकर के घूमते हैं, क्या जरूरत उनको मोबाइल की। लेकिन जब देखो SMS लिखते होंगे, मोबाइल पर बातें करते होंगे, इंटरनेट पर बैठकर चैटिंग करते होंगे, ये चीजें ऐसी है कि उनको फजूल खर्ची, फजूल पैसे और बगैर जरूरत की चीजें उनके हाथ में दे देना, जिसने आज हमारे बच्चों की तालीम को बर्बाद करके रख दिया है। और मुझे माफ कीजिए, मैं जरा खुल के बोलने का आदी हूं, मैं आपसे एक बात और दर्द से कहता हूं, आज हमारी स्कूलें और हाई स्कूलें शिक्षण केंद्र हैं या ये के प्रेम नगर बन गए हैं, हमारी समझ में नहीं आता है। वालियों को भी और टीचरों को भी इसकी तरफ फिक्र करने की जरूरत है। हमारा लड़का अभी तो टीनएजर्स है, 15-16-17 साल की उम्र के अंदर है, और ये हमारे बच्चे स्कूलों में आकर के क्या करेंगे, लफड़ेबाजियों में पढ़ते हैं, प्रेम पत्र लिखना सीखते हैं। ये वो अखलाकी गिरावट है हमारे नौजवान लड़के और लड़कियों में, जिसने आज हमारे तालीमी निजाम को बर्बाद करके रखा है। इसकी तरफ वालियों को ध्यान देने की जरूरत है बहुत सख्ती के साथ। जिस जमाने में क्रिकेट के मैच चलते हैं, फुटबॉल के मैच चलते हैं, हमारे स्टूडेंट पढ़ना लिखना छोड़ करके उसी के स्कोर के पीछे, क्लास में क्या, मस्जिद में क्या, वुजू कर रहे हैं वहां क्या, घर जाएंगे वहां क्या, कितनी विकेट गई, कितना स्कोर गया, क्या हुआ, उसी के चक्कर में उनका सारा टाइम पास होता है। ये वो चीजें हैं जिसने हमारे बच्चों की तालीम को बर्बाद कर दिया है। इसीलिए मैं ये कमजोर वीक पॉइंट आपको इसलिए खुल के बतला रहा हूं, बेटा भविष्य के लिए क्या सोचा। एक जवाब माँ बाप का भी, बच्चों का भी जवाब भी, और दुआ भी उनकी कि मौल साहब मोटा थे ने लंदन जवाना, अफ्रीका जवाना। मैं कभी कभी बयानों के अंदर तंस के तौर पर कहता हूं कि हमारे यहाँ सुन्नत है कि बच्चा पैदा होता है तो उसके दाहिने कान में अजान कहते हैं, इकामत कहते हैं, तो हमारे लोग अजान कहकर के फौरन कान में कहते हैं कि दिख रहा मोटा थे ने लंदन जवानों से आपड़े दो। ये वो चीजें कि बच्चों को बचपन से दिमाग में बिठा दिया कि हमें तो पढ़ना लिखना कोई चीज नहीं, हमें तो वहां जाकर के मजदूरी करनी है। और अब ये भी सुन लो कि ये गवर्नमेंटें भी अब जो है
वहां के लिए ऐसे कानून ला रही है कि इंग्लिश कंपलसरी वहां हो रही है और उसी के बेस के ऊपर वीजा भी मिलेगी। तो ये वो असबाब है जिसने हमारे इलाके के अंदर तालीम को बहुत कमजोर कर दिया है। मुझसे कुछ जायद बात हो गई हो तो मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, लेकिन इन कमजोरियों की तरफ आप हजरात खुसूसी तवज्जो दीजिए। मौलाना याकूब साहब फरमा रहे थे, वाकई दुख की बात है कि अब जरूरत है कि जो हमारे वाली जागरूक नहीं है, बेदार नहीं है, उनको जागरूक करने की कि अपनी औलाद की तालीम के सिलसिले में जरा बेदार हो जाओ। कोई इसकी भी तहरीक और चढ़वड़ चले, इसका भी कोई प्रोग्राम बने, इसकी फिक्र करने की खास जरूरत है। बाकी माशाल्लाह इनाम वितरण के लिए यहाँ पर बर्तन के सेट रखे हुए हैं। मौलाना फरमा रहे थे कि बहनें ज्यादा यहाँ आई हुई है, हम सब सुनते भी हैं, हमारा तजुर्बा भी है कि हमारी माँ बहनों को बर्तनों से बड़ी मोहब्बत है। वो 500 रुपए की दावत खिलाती है, 5 रुपए की चम्मच गम हो जाए तो जलजला घर में आता है। यहाँ इनाम में बर्तन देकर के यहाँ के जिम्मेदारों ने बहुत अकलमंदी का सबूत दिया है कि वो हमारी बहनों को ये बतलाना चाहते हैं कि बच्चों की तालीम तरबियत की तरफ खुसूसी तवज्जो दो। अल्लाह दुनिया में तुम्हारी पसंदीदा चीज दे रहे हैं, इंशाल्लाह आखिरत में भी तुम्हारी पसंदीदा चीज जन्नत मिलेगी। ये इनके लिए एक नेक फाली की चीज है। बहरहाल हदीस के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला कुल्लुकुम राइन, तुम में से हर एक जिम्मेदार है, बाप अपनी औलाद के बारे में, माँ अपनी औलाद के बारे में, वकुल्लुकुम मसूलुन अन रईयती, और कयामत के दिन अल्लाह ताला अपनी जिम्मेदारी के मुतालिक सवाल करेंगे। मेरे भाइयों, हमारी इस्लाम की तारीख में खानदान बनू उमैया, खानदान मुगलिया के ऐसे ऐसे दिलों को हिलाने वाले वाकियात हैं कि अपनी औलाद को उन्होंने तालीम नहीं दी तो दुनिया ने देखा कि एक वक्त वो आया कि खानदान बनू उमैया के लड़के जामे बनू उमैया के दरवाजे के ऊपर बैठ करके भीख मांगते थे और लोगों से कहते थे, ए लोगों, इस मस्जिद के बनाने वाले हमारे बाप दादा थे, इस नाम पर हमको कुछ देकर के जाओ ताकि हम अपना पेट भर सके। मुगलिया सल्तनत के नवासों को लोगों ने दिल्ली की जामे मस्जिद की सीढ़ियों पर भीख मांगते हुए देखा है और लोग उन्होंने लोगों से ये कहा कि हमारे खानदान ने ये जुमा मस्जिद बनाई थी, आज हमारे पास 2 रोटी के पैसे नहीं है। और रोते हुए वो कहते थे, काश के हमारे बाप दादा अल्लाह की दी हुई दौलत से ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला न बनाते बल्कि अपनी औलाद को तालीम और तरबियत देते तो हमको ये भीख मांगने का दिन ना आता और कयामत तक हिंदुस्तान के अंदर इस्लामी हुकूमत बाकी रहती। ये वो दुख की बातें हैं, इसलिए जरूरत है हम अपने औलाद की तालीम के सिलसिले में बेदार हो। अल्लाह ताला हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास अता फरमाए और तौफीक दे अपनी औलाद की तालीम की तरफ तवज्जो देने की। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
जज़ाकअल्लाह मुफ्ती महमूद साहब। मुफ्ती साहब खूब सुंदर रीते रजूआत करी के माँ बाप पर पोताना बाड़कना कया कया हुकूक अदा करवाना छे ते अंगे आपने खूबज सुंदर मार्गदर्शन पूरु पाड़ियो। हवे